لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك الذين كلامهم نور وأمرهم رشد ووصيتهم التقوى وفعلهم الخير وعادتهم الإحسان وسجيتهم الكرم. واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، صدق الله تعالى حيث يقول وهو أصدق القائلين وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، فمن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا. إرشاد پروردگار عالم ہو رہا ہے کہ میرے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ میں رسالت کی اجرت کے سلسلے میں تم سے کوئی مطالبہ نہیں کرتا، مگر یہ کہ میرے قرابت داروں سے محبت کرو، اور جو بھی نیکی کرے گا، حسنہ کرے گا، نزد لہو فیہ حسنہ، ہم اس کی نیکی میں اضافہ کرتے جائیں گے. تو پورے دین کی بنیاد عشق اہل بیت پر ہے، مودت اہل بیت پر ہے. بغیر ان کی محبت کے، بغیر ان کے عشق کے، نہ نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ عبادتیں قبول ہیں. اور اس سے بڑھ کر کے اور کیا ہو سکتا ہے کہ جس کے صدقے میں کائنات خلق ہوئی ہے، جس کے صدقے میں دنیا خلق ہوئی ہے، لولاک لما خلقت الافلاک، اے میرے پیغمبر اگر آپ نہ ہوتے میں کائنات کو خلق نہ کرتا. جب اس انسان سے یہ کہہ دیا گیا کہ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے یہ نہ کیا تو گویا کوئی کام انجام نہیں دیا رسالت کا، تو پھر ہماری اوقات کیا ہے، ہمارا دین کیا ہے؟ اب سمجھ میں آئے گی وہ جو روایت ہے کہ یا علی حبک ایمان وبغضک کفر ونفاق. علی، تمہاری محبت ہے اور تمہاری دشمنی کفر ہے اور تمہاری دشمنی نفاق ہے. اس کا مطلب یہی ہے کہ تم رسول اللہ سے تو بڑھ کے نہیں ہونا، آپ پہلے موجودات سے بڑھ کے نہیں ہو. جب ان کے لیے کہہ دیا گیا وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اب اگر کسی کی سمجھ میں علی نہیں آتی ہے. حالانکہ صحیح بات تو یہ ہے نا کہ علی تو ہمارے آپ کے بھی سمجھ میں نہیں آئے گی. حقیقت یہی ہے کہ اگر ہم چاہیں کہ حقیقت امیر المؤمنین کو سمجھ لیں، ارے بھیا حقیقت تو جانے دیجئے. ان کے سلسلے میں جو فضائل ہیں، جو روایتیں ہیں نا، آپ یقین کہ یہ روایت نہیں سمجھ سکتے ہم لوگ. روایت صحیح مطلب، دو ایک روایتیں پڑھ دیتا ہوں. چلیے، ہم کو مصیبت ہمارے ساتھ یہی ہے کہ چلتے کہیں ہیں، سوچ کے آتے کہیں ہیں، جاتے کہیں ہیں. خلق ذکر مولا سے مطلب ہے، اہل بیت کے تذکرے سے مطلب ہے، گفتگو چاہے ادھر چلی جائے. ہم روایت سمجھنے کی صلاحیت ہمارے اندر نہیں ہے، ذات کو سمجھنا تو دور کی چیز ہے. ایک مولا کا فقرہ ہے، دو تین میں حدیثیں پہلے سنا دوں آپ کو، اس کے بعد نہیں کیا اس کا مطلب ہماری آپ کی سمجھ میں آتا. ایک مولا کا فقرہ ہے، نزلونی عن الربوبیہ وارفعوا عنا حدود البشریہ، ہم کو ربوبیت سے نیچے رکھو. यानी हमको रब न कहो, तो फिर क्या कहें? इंसान है और क्या है, रब तो नहीं तो इंसान है। लेकिन अगला फकरा वरफऊ अन्ना हुदूद अल बशरिया, मगर हमको बशरियत के हुदूद से ऊपर रखा। इसका मतलब हुआ इसने अकल में आती है कि साहब अशरफ मौजूदात कौन है? इंसान है ना। अशरफुल मखलूकात कौन है? इंसान है ना। जब आपको इंसान ही न कहा जाए और आपको अल्लाह भी न कहा जाए तो कहा क्या जाए? न हमको बशर कहो। अच्छा, और कमाल यह कि एक बात पहले दिन कहते हैं, अगर कुरान को रिवायत से मिलाइए टैली कर जाए तो कबूल कीजिए, टैली न करे तो फेंक दीजिए। ये इत्तेफाक से कुरान से भी टैली नहीं करती। ये जो फिक्रा है और कहा है नहीं बुलावा में कि हमको बशर न कहो और रब न कहो, बशरियत के ऊपर रखो। कुरान ने पैगंबर को क्या कहा? सूरह कहर, कुल इन्नमा अना बशरुन मिथलुकुम, ये मेरे हबीब आप कह दीजिए मैं तुम्हारे जैसा बशर हूं। तो कुरान कहता है नबी बशर है, अली कहते हैं वरफाऊ अन्ना हुदूद अल बशरिया, हमको बशरियत के हुदूद से ऊपर रखो। ये तो कुरान से भी चकरा रही, लिहाजा रिवायत मानने के लायक नहीं है। एक दूसरी उसी नजर वलागा में इतना मशहूर फकरा कि आप सब दोहरा देंगे, मैं जमीन से ज्यादा, कोई नई बात मैंने कही। इसको आप, इसका मतलब क्या हुआ, पलटिए इसको, यानी अली जमीन से ज्यादा आसमान के रास्ते में जानते हैं, मतलब यानी आसमान के रास्ते ज्यादा जानते हैं जमीन के रास्ते। आप क्या है, सैयद है भैया? आपके जद की बात है, आप कह दीजिए कम जानते हैं। मेरी तो हिम्मत नहीं है कि मैं अली अलैहि सलाम के लिए कहूं कि मौला कम जानते हैं। सलवात है मोहम्मद। तीसरी चीज, पैगंबर ने फरमाया या अली हुब्बुका ईमानुन व बुग्ज़ुका कुफ्रुन व निफ़ाक़, ठीक, या अली अंता बिमंज़िलतिल काबा, अली तुम्हारी मिसाल काबे किसी है। क्या ये सारी बातें समझ में आ रही है हमारे? अब आइए पहले फकरे में, क्या फरमाया? नज़्ज़िलूनी अनिर रुबूबिया, हमको रुबूबियत से नीचे रखो, वरफऊ अन्ना हुदूद अल बशरिया, और बशरियत के हुदूद में हमको मत जकड़ो। एतराज हमारा ये था कि पैगंबर से बड़ा तो नहीं कोई ना कायनात में। पैगंबर के लिए कुरान ने कहा कि कुल इन्नमा अना बशरुन मिस्लुकुम, ए हबीब आप कहिए मैं तुम्हारे जैसा बशर हूं, और अली कहते हैं कि मुझको बशरियत के हुदूद में न जकड़ो। जवाब, कुरान पढ़ना सीखिए। कुरान इसी पर तो नहीं ना कुरान रुक गया कि कुल इन्नमा अना बशरुन मिस्लुकुम, जो मैं तुम्हारे जैसा बशर। अगला फकरा क्या है आयत का? पूरी आयत पढ़ना चाहिए, कुल इन्नमा अना बशरुन मिस्लुकुम यूहा इलाय, ए पैगंबर आप कह दीजिए कि मैं तुम्हारे जैसा बशर हूं, मेरे ऊपर वही नाजिल होती है। तो इसका मतलब जो है कि बशर दो तरह के हुए ना, एक जो है नॉर्मल बशर है और एक बशर वो है कि जो यूहा इलाय। इंसान की डिफिनेशन क्या है, बशर की तारीफ क्या है? आप जब बशर की तारीफ करने जाएंगे तो बशर की तारीफ है हैवान नातिक, हैवान प्लस नातिक बराबर इंसान। इत्तेफाक से मंतिक सब्जेक्ट भी स्कूल में हमारे पास है, तो ऐसे ही लिखते भी हैं ब्लैक बोर्ड, हैवान प्लस नातिक बराबर इंसान। तो घोड़ा क्या है? हैवान। गधा क्या है? हैवान। खच्चर क्या है? अच्छा, एक फिक्रा और भी है पैगंबर का बहुत मशहूर ना, अली तुमको या मैंने पहचाना या अल्लाह ने पहचाना, यानी हम आप पहचान भी नहीं सकते। तो पैगंबर ने भी तायीद कर दिया। घोड़ा क्या है? हैवान। गधा क्या है? हैवान। बकरी क्या है? हैवान। हम आप क्या है? हैवान। हम आप क्या है? हैवान। आपको शर्म नहीं आती कि साहब घोड़ा भी हैवान है, हम भी हैवान है? कनिफ्ता वो सिर्फ हैवान है
और हम हैवान के साथ नातिक भी हैं। तो एक जरा सा डिफरेंस हो गया, वो खाली हैवान है, हम हैवान नातिक हैं। फर्क क्या हुआ, 2000 साल पहले जहां हैवान था आज भी वो हैवान वही है, 2000 साल पहले घोड़ा जहां था आज भी घोड़ा वही है, 2000 साल पहले जहां हैवान नातिक था वहां नहीं, जमीन से आसमान का फर्क हो चुका। क्यों कहा, इसके अंदर अकल पाई जाती है। तो हमारे और बकरी के अंदर फर्क क्या, हैवानियत पूरी जितनी घोड़े के अंदर है उतनी हमारे अंदर भी है। घोड़ा खाता है, हम भी खाते हैं। घोड़ा अपने इरादे और इख्तियार से उठता और बैठता है, हम भी उठते और बैठते हैं। घोड़े के अंदर शहवत पाई जाती है, नस्ल बढ़ती है, हमारे अंदर भी नस्ल बढ़ती है, शहवत पाई जाती है। घोड़े को जलाल आता है, गुस्सा आता है, हमको भी जलाल आता है, गुस्सा आता है। तो जितनी हैवानियत घोड़े में है उतनी ही हैवानियत हमारे अंदर भी है। हैवानियत के एतबार से हम में और घोड़े में, हम में और गधे में कोई फर्क नहीं है। जितनी हैवानियत जानवर के अंदर है उतनी हैवानियत हमारे अंदर भी है, इस फर्क के साथ, इस डिफरेंस के साथ कि उसके अंदर सिर्फ हैवानियत है और हमारे यहां हैवानियत के साथ साथ अकल ही पाई जाती है। हमारी हैवानियत ताबे अकल है। अब अगर अकल गालिब आ जाए तो इंसान फरिश्ते से बुलंद हो जाएगा, और अगर अकल मगलूब हो जाए तो इंसान जानवर से पस्त हो जाएगा। तो अब जरा सी अकल हमारे अंदर आ गई तो कहां घोड़ा कहां इंसान। वैसे ही कुरान ने कहा कि पैगंबर आप कहिए मैं बशर हूं, अगर बशर हम भी है, बशर पैगंबर भी है, लेकिन अगर सिर्फ बशर होते तो हमको हक था कहने के जैसे हम वैसे रसूलुल्लाह। कुरान ने सिर्फ बशर नहीं कहा, अगला फकरा क्या है, यूहा इलाई, मेरे ऊपर वही नाजिल होती है जैसे घोड़ा फकत हैवान है, हम हैवान नातिक है, वैसे ही हम फकत बशर है, पैगंबर ऐसे बशर है जिन पर वही नाजिल होती है। तो जैसे हैवान की दो किस्में हुई वैसे ही बशर की भी दो किस्में हुई, एक खाली बशर और एक वही जिस पर नाजिल होता है होती है वो बशर, या यूं कहिए एक खाकी बशर और एक नूरी बशर। जो डिफरेंस हैवान और हैवान नातिक में है वही डिफरेंस खाकी बशर और नूरी बशर में है। दुनिया के सारे जानवर मिलकर के हैवान है ना, वो भी दुनिया के सारे जानवर मिलकर के हैवान नातिक की एक सिफत को समझना चाहे समझ सकते हैं। दुनिया के सारे घोड़े जो है वो मिल करके, जब सारे जानवरों ने जब वो हंगामा कर दिया ये जुल्म नहीं चलेगा, ये जुल्म बर्दाश्त नहीं होगा, इंसान जालिम हो गया, जब तक साहब जो है वो हमारे अंदर ताकत है, हमारा दूध पीता है, दूध के बाद हमारे को जबा करके हमारा गोश्त खाता है, उसके बाद नहीं बख्शता, हमारे चमड़ों को अपने पैरों में लगाता, जूते बनाता है, जो जुल्म नहीं चलेगा, आजादी आजादी आजादी, सारे जानवरों ने साहब जो है वो आजादी का नारा बुलंद कर दिया। क्या भाई क्या बात है, तो उसमें एक भैंस थी जो कुछ ज्यादा नेता टाइप की थी, उसने कहा था ये जुल्म बर्दाश्त के बाहर है, ये जुल्म बर्दाश्त नहीं होगा। हमने कहा ठीक है आपको आजादी दिलाने की जिम्मा मैं लेता हूँ, इसलिए हम बशर है, हवाले नातिक है, उनके मौलवी है, हम अपनी कौम की तरफ से शीलों की तरफ से हम वादा करते हैं कि सारे जानवर आजाद है, लेकिन एक बात ये बताइए कि आप लोग अगर बीमार हो गए कोई इलाज करने वाला है तबीब कोई आप क्या है, ए भैंस आपा कोई डॉक्टर आपके पास है, तो उन्होंने कहा डॉक्टर क्या है, मैंने कहा बस शर्त आजादी की यही है कि आप लोग मिल करके सारे जानवर, हम पूरे इंसान को समझने की बात नहीं करते, इंसान की एक सिफत तबाबत है उसको आप समझ लीजिए, बयान कर दीजिए, हम वादा करते हैं कि सारे जानवरों को कम से कम शिया कौम की तरफ से आजाद कर देंगे, पूरी दुनिया के जानवर मिलकर कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तबाबत क्या है, हिकमत क्या है, डॉक्टरी क्या है, कोई जानवर समझ सकता है। अब साहब 15 दिन का एक महीने का जो टाइम था सारे जानवरों ने सर जोड़ के नहीं समझना है, कर ले हम तो नहीं समझे डॉक्टर क्या है, तो आप तो खुद डॉक्टर है ना, आप ही बता दीजिए कि साहब डॉक्टरी क्या चीज है। तो अब यहाँ इंसानों ने भाई सब लोग मिल करके पूरा मकाला तैयार कीजिए, भैंसों को समझाना है, 2.5-3 पेज का एक मकाला तैयार हुआ कि तबाबत क्या चीज है, जा करके आप घंटे भर के जो है सारे जानवरों के सामने तकरीर करके आइए, हिकमत इसे कहते हैं, तबाबत इसे कहते हैं, ये किसी जानवर की समझ में बात आएगी, वो तो नहीं समझे आप समझा सकते हैं भाई,
यही फर्क है कि हम तो जो नहीं समझे अहले बैत को, अहले बैत भी अगर चाहे कि हमको अपनी हकीकत समझा ले जाए तो हमारे अंदर ये सलाहियत ही नहीं है कि उनकी हकीकत तक हम पहुंच सके। सलावत पर मोहम्मद अहले बैत क्या है, हम क्या जाने अली क्या है, हम क्या जाने हुसैन क्या है। और जब ये बात समझ में आ जाएगी आदमी के, खैबर क्या वजन था खैबर का, मुहद्दिस देहलवी का नाम सुना होगा ना आपने, बड़ी ऊंची चीज थे, बहुत कुछ इन्होंने किया है। मुहद्दिस देहलवी है नहीं, भूल गया 320 क्विंटल 32 टन दरे खैबर का वजन 320 क्विंटल। मशहूर यह है कि 40 अफराद इस दरवाजे को खोलते और बंद करते थे, और बाद में यहां तक कहते हैं कि हाथ से नहीं, वो भी रस्सा लगा करके, और रस्से से ताकत कुछ ज्यादा लग जाएगी। बाज महक साहब एक पट को खोलने के लिए 18 आदमी लगते थे, यानी 36 अफराद, चलिए कम भी मान लीजिए आप। रिवायत क्या कहती है कि जिस दरवाजे को 40 आदमी खोलते बंद करते थे, या 36 आदमी या 18 आदमी, उसको मौला अमीरुल मोमिनीन सलामुल्लाह अलैह ने अच्छा नहीं सिर पे उखाड़ा, अब वो उनके हाथों पर है, ठीक, पूरी फौज अमीरुल मोमिनीन सलामुल्लाह अलैह के हाथों पर से गुजर रही। उस जमाने में एक से एक ताकतवर थे, इसमें कोई एक एक आदमी कई कई सवारों के बराबर होता था। हजरत शामी नाम सुना है ना, कई कई मर्जियों में अर्जक लिख दिया गया, वो मिस्री अजरक शामी से पहले रे बाद में अर्जक नहीं बल्कि अजरक शामी कहते 4000 सवारों के बराबर था, जिसको जनाब कासिम सलामुल्लाह अलैह ने कत्ल किया। ये शेर बहादुर थे, लेकिन चाहे जितनी ताकत हो और चाहे जितने बहादुर हो, किसी के अंदर इतना दम है कि वो 32 टन का दरवाजा हाथ में ले ले। फितरत क्या है कि जो चीज इंसान के बस में नहीं है उसमें फितरत हमारी आपकी क्या है, ये फितरत है कि आदमी, रिवायत से पता चलता है कि जब अमीरुल मोमिनीन सलामुल्लाह अलैह, हाँ बिल्कुल साफ रिवायत नहीं है लेकिन महसूस होता है कि सबकी निगाहें अली अलैहिस्सलाम के हाथ पर जम गई। दलील क्या है, मैंने कहा अगर हाथ पर न जमी होती तो लोगों ने कहा या रसूलुल्लाह अली को देखिए, या रसूलुल्लाह अली को देखिए, पैगंबर का जवाब क्या था, अबे हाथ क्या देख रहे हो, पांव देखो, इसका मतलब क्या हुआ, यानी इतना मैं बाप रे, हाथ से जमीन, आंख जो है वो हाथ से नीचे नहीं आई, पैगंबर को कहना पड़ा ऊपर क्या नीचे देखो, अब जो नीचे देखा तो क्या हुआ, पांव जमीन पर नहीं थे। अब ये फकराना युलबलागा का समझ में आएगा, सलवात दर मोहम्मद पांव जमीन पर नहीं है। मैंने कहा मौला अमीरुल मोमिनीन जाने कुर्बान आका 32 टन का दरवाजा उखाड़ना मामूली बात है, किसी के बस में नहीं है, फिर उसको हाथों पर ले लेना और पुल का काम करना, फौज गुजर जाए, ये मामूली बात है, इतना बहुत था, ये पैर क्यों जमीन से उठा लिया आपने, रहने देते। अजब नहीं हजरत जवाब दे, ये इस दौर के लोगों के लिए नहीं है, ये तुम्हारे दौर के लोगों के लिए है, आने वाले जमाने के लिए, क्यों अखबारा तो आप पढ़ते रहते हैं ना, टीवी देखते रहते हैं, अक्सर इसी इलाके में ज्यादा होता है, जैसा फला आदमी ने मूछों से तार खींच ली है ना, आप कर सकते हैं, हम कर सकते हैं, मूछे तो है हमारे पास, मूछे वही रह जाएगी, तो भाई जितना वो खाता है वो भी खाता, हम भी खाते हैं, वो कैसे मूछों से कार खींच सकता है, हम नहीं खींच सकते, साहब फला आदमी ने जो है 5 गुम्मे कान में बांध के लटका लिए साहब, तो हमारा तो कान ही चला जाएगा नीचे, तो वो कैसे ये कर सकता है, हम नहीं कर सकते, तो उसका जवाब क्या है कि उसने मश्क की है ना, उसने रियाज किया है। अगर आदमी मश्क कर ले जाए तो उसकी मूछे इतनी मजबूत हो सकती है कि वो उन मूछों से कार खींच ले, हम हाथ से नहीं खींच सकते, वो मूछों से कार खींच सकता है। अगर अली अलैहिस्सलाम ने पैर जमीन से न उठाया होता तो ये मौजजा न कहते आज के लोग। लेकिन जितनी दुश्मनी लोगों का अमीर सलामुल्लाह अलैह से है ना, बकौल मरहूम है अल्लामा अमीनी रहमतुल्लाह अलैह के, वाकई हम क्या जाने के अली क्या है, اللہ میں امینی رحمت اللہ علیہ رضوان اللہ علیہ اس شخصیت کا نام ہے کہ جس نے برسوں کی محنت کے بعد 11 جلد مرتب کی الغدیر کے نام سے دنیا کے جس کونے میں اس بندہ خدا کو خبر ملی کہ امیر المومنین سلام اللہ علیہ سے متعلق کتاب ہے وہاں کا سفر کیا ہے اس شخص نے. ہندوستان بھی گئے, لکھنؤ بھی گئے, لکھنؤ میں ناصر الملت کے کتاب خانے میں ناصریہ لائبریری بھی گئے. وہاں سے جب پلٹ کے آئے تو کسی نے پوچھا کہ حضور لکھنؤ کا موسم کیسا ہے, اللہ امینی سے ان کو نہیں معلوم. اس کو کوئی آدمی لندن میں آئے اور واقعی کمرے میں بند رہے, یہاں پتا چلا ٹھنڈک کتنی ہے, اور اب یہاں سے نکل کر فوراً گاڑی میں بیٹھ کے ہم ایئرپورٹ چلے جائیں, کوئی پوچھے وہ لندن میں ٹھنڈک کیسی, تم کیا بتائیں ٹھنڈک کیسی. اللہ امینی رحمت اللہ علیہ سے پوچھنے والے نے پوچھا کہ کیسا موسم ہے لکھنؤ کا, ہوگا مجھے ارے ہم اتنے دن لکھنؤ میں رہ کے آ رہے ہیں, آپ کو موسم نہیں معلوم, بارش کیسے ہوتی ہے, ہوا کتنی تیز چلتی ہے, پتے کیسے پیڑوں سے گرتے ہیں. کبھی میں جس کام کے لیے گیا تھا, میں لائبریری میں رہتا تھا, ناصر حسین صاحب کا خادم لا کے مجھے کھانا دیتا تھا, میں کھا پی کے پھر اپنے کام میں لگ جاتا تھا. اس محنت اور مشقت کے باوجود اتنے عظیم انسان ہیں کہ انہوں نے کتاب لکھی کتنے پر, 11 جلدوں کا نام الغدیر. الغدیر کے مقدمے میں تحریر فرمایا. ایک بات تو کہی ہے اور ایک بات نہیں کہی ہے, لیکن لکھی نہیں ہے, کہی ہے. جو لکھی ہے وہ یہ ہے, خدا کی قسم میرا دل چاہتا ہے بعد وفات پیغمبر پیدا کیا گیا ہوتا, قیامت تک کی اللہ نے زندگی دی ہوتی, شب و روز نیند اور بھوک کا احساس سر کر لیا گیا ہوتا, میرا کوئی کام نہ ہوتا سوائے اس کے کہ قبر علی پر بیٹھ کے مظلومیت علی پر گریا کرتا. اب مجھ کو پتا چلا ہے علی کیا تھے اور علی کے ساتھ کیا کیا گیا. یہ تو لکھا انہوں نے, اور جو نہیں لکھا اپنے شاگردوں سے انہوں نے, اپنے شاگردوں سے انہوں نے, اپنے شاگردوں سے پھر وہ بات ہم لوگوں تک, وہ یہ کہ فرماتے ہیں کہ جو کچھ میں علی کے بارے میں لکھتا ہوں وہ میرے عقائد کا ایک حصہ ہے. جو میں علی کو سمجھتا ہوں اگر وہ لکھ دوں تو میرے اوپر ہنگامہ شروع ہو جائے گا. صلوات پر محمد. یا امیر المومنین, یہ 32 ٹن کا دروازہ اٹھانا معمولی کام نہیں تھا, ہاتھوں پر اس کو لے لینا معمولی کام نہیں تھا, یہ پیروں کو کیوں اٹھا لیا آپ نے؟ مولا کا جواب ہوگا یہ آج کے دور کے لیے نہیں ہے, یہ تمہارے دور کے لیے ہے. اگر میں یہ نہ کرتا تو کل کو جو متعصب افراد ہیں جن کو بہانہ ملنا چاہیے اہل البیت سلام اللہ علیہ کے فضائل کو کم کرنے کا, وہ جانتے ہو کیا کہہ دیتے ہیں؟ آج کا آدمی جب ملاوٹ کی چیزیں ہیں, ہر چیز میں تو ڈپلیکیٹ شروع ہو گیا ہے, تب تو آدمی اگر مشق کر لے جائے تو مونچھوں سے کار کھینچ سکتا ہے. اس زمانے میں تو ہر چیز اوریجنل تھی, کہیں کوئی ملاوٹ نہیں تھے, اور علی بہرحال طاقتور یوں بھی تھے, تو علی نے جو مشق کی تو اور زبردست مشق تھی. مشق کی بنیاد پر انہوں نے در خیبر ہاتھ اٹھا لیا, تو یہ مشق کے حوالے, ریاض کے حوالے کر دیا جاتا, یہ معجزہ نہ بنتا. اب اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ صاحب کون سا کمال ہے, آج آدمی مونچھوں سے کار کھینچ لیتا ہے, علی نے در خیبر اکھاڑ لیا, وہ ان کی ریاضت اور ان کے مشق کی بات تھی, تو تم بس اتنا کہنا کہ ٹھیک ہے وہ 32 ٹن تھا نا, تم 32 کلو لے لو. 32 کلو نہیں, خالی ہاتھ, خالی ہاتھ نے کپڑے اتار دو, جتنا واجب میں پہننا بس اتنا پہنو, ایک پیر اٹھاؤ آدمی اٹھا دے گا نا, دوسرا پیر اٹھاؤ, سب دوسرا تو نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کہ اس لیے کہ ہم خاکی ہیں اور زمین کے اندر جو ہے وہ کشش پائی جاتی ہے, ہم بھی خاکی ہے, زمین بھی خاک ہے, کشش پائی جاتی ہے, ہم جب دونوں قدم اٹھائیں گے تو گر پڑیں گے. علی نے شاید اسی لیے دونوں پیر زمین سے اٹھائے تھے کہ نزلونی علی الربوبیہ, ہم کو رب نہ کہنا کہ جسم رکھتے ہیں, وارفعوا عنا حدود البشریہ, بشریت کے حدود سے اوپر رکھنا کہ تمہارے جیسے بشر بھی نہیں ہے. صلوات پر محمد. علی کیا ہے؟ یا علی انت بمنزلت الکعبہ, علی تمہاری مثال کعبے کسی ہے. یہ مولا کی فضیلت بیان ہو رہی ہے, علی کی تعریف ہو رہی ہے. آپ کا وطن کہاں ہے؟ आपकी नजर में सबसे अच्छा खतीब पाकिस्तान में, मगर नहीं वो बात सवाल मुनासिब नहीं है। सलवा मोहम्मद।
चलिए मरहूमीन में कहिए,
तालिब जौहरी साहब चलिए कह दिया आपने, ठीक आपकी नजर में, और हकीकत भी है, गलत बात ही नहीं, एक इल्मी गुफ्तगू के वाकई तालिब जौहरी साहब, आपको तालिब जौहरी साहब की तारीफ सूझी, बुजुर्ग शख्सियत है, आपने कहा साहब तालिब जौहरी साहब क्या उमदा मजलिस पढ़ते हैं, जस्ट लाइक वसी हसन, बिल्कुल जैसे वहां इस्लामी सेंटर में वसी हसन आए थे ना मजलिस पढ़ने, वैसे ही तालिब जौहरी साहब पढ़ते हैं, ये आपने जो है वो तारीफ की है तालिब जौहरी साहब को, बढ़ाया है घटाया है,
आप अगर ये कहते कि साहब जैसे तालिब साहब पढ़ते हैं इल्मी गुफ्तगू वसी हसन ने वैसी पढ़ी, तो वसी हसन जमीन से कुछ थोड़ा सा उठ जाते, तो अगर किसी को बढ़ाना है तो उसको उससे ऊंचे से तशबीह दी जाएगी ना, ना कि छोटे से तशबीह दी जाएगी, आप एक बच्चे से तशबीह दे करके तालिब साहब की तौहीन कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं।
सुहाल काबा अफजल के अली, ओ इख्तलाफ हो गया, पहले यही तय हो जाए, जब जब सामीन में काबा अफजल के अली एक आवाज आई काबा, फिर किसी ने कहा अली, हम भी उसके साथ हैं जिसने कहा काबा, क्यों? मैंने कहा इसलिए कि अगर कोई शख्स काबे की तरफ रुक करके सर न झुकाए मुसलमान नहीं है, काबा बैतुल्लाह है, काबा अफजल है, पलट के दूसरे वाले ने जवाब दिया मौलाना एक ही निस्बत तो है बैतुल्लाह की और अली के बारे में कितनी निस्बतें गिना दूं, वलीउल्लाह वो, ऐनुल्लाह वो, वजहुल्लाह वो, लिसानुल्लाह वो, हुज्जतुल्लाह वो, अब फिर आप बताइए काबा अफजल के अली, अली और क्लियर करें काबा अफजल के अली, आंख बंद कीजिए, जो कुछ इंसान के जहन में तसव्वुर आता है उसकी दो किस्में हैं, या वो चीज मौजूद है या मौजूद नहीं है, आप अकली सवाल, किसी किताब की बात नहीं, अकल हर आदमी इस्तेमाल, जो भी मौजूद इंसान के जहन में तसव्वुर आता है उसकी दो किस्में, या मौजूद है या मादूम, अशरफ और अफजल कौन है, ख्यालात या मौजूदात, मौजूदात, तमाम मौजूदात उनकी दो किस्में हैं, या उनके अंदर बढ़ने की सलाहियत है या बढ़ने की सलाहियत नहीं है, नमोब है या नमोब नहीं है, अशरफ और अफजल कौन है, जिसके अंदर बढ़ने की सलाहियत है, जैसे ईंट और पत्थर बढ़ने की सलाहियत नहीं है, दरख्त बढ़ने की सलाहियत है ना, तमाम इंसान बढ़ने की सलाहियत, घोड़ा बढ़ने की, अभी सब शामिल, तमाम वो चीजें जिनके अंदर बढ़ने की सलाहियत है उनकी दो किस्में हैं, या उनके अंदर हिस पाई जाती है महसूस करते हैं या हिस नहीं पाई जाती, जैसे बढ़ता दरख्त भी है बढ़ता इंसान भी है बढ़ता घोड़ा भी है, तो अफजल कौन हुआ जिसके अंदर हिस पाई जाती है या जिसके अंदर हिस नहीं पाई जाती, जिसके अंदर हिस पाई, तमाम हसास, अब इसमें सब घोड़ा भी है इंसान भी है, उनकी दो किस्में हैं, या अकल है या अकल नहीं है, अफजल और अशरफ कौन है, जिसके पास अकल पाई जाती है और कम हुआ, तमाम अकल वाले उनकी दो किस्में हैं, या आलिम है या जाहिल, अफजल कौन है, आलिम, तमाम उलमा उनकी दो किस्में हैं, या जाहिल पैदा होते हैं यहां आके इल्म सीखते हैं और या उधर से इल्म लेके आते हैं, अशरफ कौन है अफजल कौन है, जो उधर से इल्म लेके आता हूं, काबा काहे से बना है, ईंट से, पत्थर से, खाक से, है ना, जो पहली मंजिल में जहां बढ़ने की भी सलाहियत नहीं है, और अली कौन है, आखिरी मंजिल पर जो उधर से इल्म लेके आए हैं, अब बताइए काबा अफजल के अली, अली, अभी आपने ये कहा कि अगर आप ये कहिए कि वसी हसन मजलिस पढ़ते जैसे तालिब जौहरी साहब, तो वसी हसन की हैसियत तो बढ़ जाएगी, लेकिन अगर आपने उल्टी बात कह दी कि तालिब जौहरी साहब ऐसी मजलिस पढ़ते जैसे वसी हसन, तो तालिब साहब की तौहीन की कि नहीं की, अगर पैगंबर यह फरमा देते कि काबा जस्ट लाइक अली, तो काबे की हैसियत, लेकिन पैगंबर ने क्या कहा, या अली अंत बेमंजिलतिल काबा, अली तुम्हारी मिसाल काबे की सी है, अली को मिसाल दी गई काहे से, काबे से, ये अली को बढ़ाया गया कि घटाया गया, या रसूल अल्लाह अगर कोई और कहता तो हम तो बिल्कुल आपा खो देते हैं, हम उसको नवाजते हैं। मेरा मौला बेजान चीज तशबीह दे रहे हैं आप, बड़ी चीज को छोटी चीज से तशबीह दे रहे हैं आप। अजब नहीं पैगंबर जवाब दें, यही काम तुम रोज करो तो कोई बात नहीं है, हमने कह दिया तो तुमको बुरा लग गया, अकल तुम्हारे पास नहीं है, एतराज हमारी रिवायत पर। मतलब क्या मतलब, तुम बताओ जानवर अफजल है कि इंसान? इंसान। क्या नाम है आपका? शाहिद। बेटा है ना? क्या नाम है? हरकान। खाकान। खाकान। मैंने कहा खाकान मिसल शेर गिल। देखिए मुस्कुरा रहे, देखिए 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 मुस्कुरा रहे। शेर अफजल है कि इंसान? इंसान। हमने इनके बेटे खाकान को जानवर कह दिया, जानवर। बुरा नहीं लगा इनको, मुस्कुरा रहे थे, सबने देखा ना मुस्कुरा रहे थे। तुम जो है वो छोटी चीज से तशबीह दो तो बुरा ना लगे, हमने कह दिया अली जस्ट लाइक काबा तो तुमको बुरी लग गई बात। तो अब यहां मसला बड़े से छोटे या छोटे से बड़े को तशबीह देने का नहीं है। तशबीह के चार रुकन होते हैं, मुशब्बह, मुशब्बह बे, वजह शबह, हर्फ तशबीह। मुशब्बह जिसको तशबीह दी जाए, जैसे खाकान। मुशब्बह बे जिससे तशबीह दी जाए, जैसे शेर। हर्फ शबह किस लफ्ज को शबाहत के लिए इस्तेमाल किया जाए, जैसे मिसल। वजह शबह, क्यों आपने कहा खाकान मिसल शेर के? शेर के बड़े बड़े नाखून होते हैं, खाकान को भी 6 महीना हो गया है नाखून नहीं कटवाया, इसलिए शेर है। शेर कच्चा गोश्त खाता है, ये भी कच्चा गोश्त खाता है, इसलिए शेर है। शेर दरिंदा है, जालिम है, अपने से छोटे जानवरों पर जंगल में जुल्म करता है, इनका बेटा भी जालिम है, इसलिए शेर है। कौन नहीं? तो फिर आपने क्यों कहा शेर? कहा आपने नाखून पर गौर किया, आपने उसके दरिंदगी पर गौर किया, आपने उसे कच्चा गोश्त खाने पर गौर किया। शेर के अंदर एक सिफत और भी तो पाई जाती है, क्या? का उसका नाम है जुरात, हिम्मत, शुजाअत। हमने जब असद को तशबीह दी है शेर से, तो शेर के नाखून को जहन में नहीं रखा है, उसकी दरिंदगी को जहन में नहीं रखा है। वजह है शबाह, क्या है शबाहत की वजह? क्या है का शेर सजा है, ये इनका बेटा भी सजा है, इसलिए हमने उसको शेर कहा। वैसे ही पैगंबर ने जब कहा अली तुम्हारी मिसाल काबे की सी है, तो पैगंबर ने काबे की खाक को जहन में नहीं रखा, उसके ईंट को जहन में नहीं रखा है, उसके पत्थर को जहन में नहीं रखा है। फिर क्या चीज? वो वजह शबाह तलाश करो, जब शबाहत की वजह समझ में आ जाएगी, हदीस समझ में आ जाएगी। एक तरफ ठीक नहीं, हज किया आपने, करना चाहते हैं, काबे के तवाफ बड़ा सवाल है ना उसका, मनताफ अलबैत उसबूअन, जिसने अल्लाह के घर का तवाफ किया 7 मरतबा, कुतिबा लहू सित्तत आलाफ हसना, 6,000 नेकियां लिखी जाएंगी ना, 6,000 बुराइयां मिटाई जाएंगी, 6,000 दरजात तरक्की अता की जाएगी। किसको? मनताफल बैत उसको, जिसने अल्लाह के घर का तवाफ किया 7 मरतबा। तो किसको शौक नहीं होगा कि जरा हम भी चले जाए मक्के, हम भी तवाफ कराएं। जो अगर हज के लिए जाता है अल्लाह के लिए, पलट के आता है सब गुनाहों से पाक, जैसे माँ के शिकम से पैदा हो रहा है, शौक नहीं होगा आदमी को। लेकिन हालात यह है कि अभी हम हिंदुस्तान से जाइए प्राइवेट टूर से तो 1,80,000 रुपए, गवर्नमेंट के कोटे से सब्सिडी कुछ गवर्नमेंट देती है उससे जाइए तो हज कमेटी से 1,00,000 के आसपास तब भी लग जाएगा। तो 1,00,000 भी एक आम आदमी के लिए कम, अगर गवर्नमेंट से जाता है तब भी 1,00,000 रुपया कम नहीं, प्राइवेट टूर से 1,80,000 रुपए आसान काम है बेचारे का, 1,80,000 2,00,000 रुपया जमा करना परेशान है, मगर शौक है उसको किसी सूरत चले जाते हैं, खाना खुदा का तवाफ कर लेते। हमने परेशान देखा, मैंने कहा परेशान मत हो, काबे का तवाफ करना चाहते हो? हाँ। मैंने कहा मैं तरीका बताता हूँ, मक्के जाने की जरूरत ही नहीं है, पैसा खर्च करने की जरूरत ही नहीं है। मैंने क्या करना होगा? मैंने कहा एक दुआ बताऊंगा मैं, 1.5 लाइन की है, एक सर्किल बना लीजिए, उसके अंदर बैठ जाइए इस्लामिक सेंटर में आकर के 40 दिन तक आप बैठिए, गोश्त लहसुन प्याज अदरक क्या क्या बताते हैं ये लोग वो सब छोड़ दीजिए, आप ये दुआ पढ़िए 40वें दिन मक्के से काबा उठेगा, यहाँ आ जाएगा, सब लोग पूरी कौम के लोग तवाफ कर लीजिए, जब आप कहिएगा तब वापस चला जाएगा। मैं अपने सर के ऊपर कुरान रख के कहूँ कि मेरे पास ऐसी दुआ है कि अगर आप पढ़िए 40 दिन तक लगातार तो खाने काबा मक्के से उठ के यहाँ आएगा, कोई मेरी बात कबूल करेगा, कोई मेरी बात मानने को तैयार होगा। बात तो हमारे इलाज की फिक्र हो जाएगी, जो मोमिन होंगे बेचारे परदेश में बेचारे का दिमाग खिसक गया है, कुछ जो है वो क्रैक हो गया है, ले चलो भाई कहीं जो है वो। तो काबे की खसूसियत क्या हुई, काबा अपनी जगह से नहीं हिलता, काबा अपनी जगह से नहीं टलता, काबा कहीं नहीं जाता, जिसको गरज हो वो काबे के पास आता है, काबा किसी के पास नहीं जाता। या अली अंतब मंजिलतिल काबा, अली तुम्हारी मिसाल भी काबे की जैसी है, जिसको गरज हो ईमान बचाने की वो अली के दर पर आएगा, अली को कहीं जाने की जरूरत नहीं। और इस फिक्रे की लाज, या अली अंता बे मंजिलतिल काबा, इस फिक्रे की लाज किस तरह रखी है मौलाए कायनात ने। एमपी का इलेक्शन होता है ना, एमएलए का इलेक्शन होता है, अब क्या भी होता होगा, हमारे यहां भी होता है, और क्या कुछ नहीं होता इसमें, हत्या जो गांव के इलेक्शन होते हैं, इसको मुखिया कहते हैं, कहीं प्रधानी कहते हैं, कहीं कुछ कहते हैं, उस पांच साल के लिए आप जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गए, क्या हुए, हाकिम हो गए आप, कुछ नहीं। अगर ईमानदार आदमी है तो उसका शायद जो मिलता है तनख्वाह के तौर पर एमपी को, वो भी पूरा खर्च उसका नहीं हो पाएगा, लेकिन इस 5 साल के लिए आदमी लाखों खर्च करता है, करोड़ों खर्च करता है, कहे के लिए, अरे साहब एमपी साहब इतना कहलाने के लिए, और वो भी कितने दिन के लिए, 5 साल के लिए। एमपी है आप, हाकिम नहीं है। खलीफा का मतलब क्या होता है, हाकिम है मुतलक, कई साल के लिए होता है, का गदीर से लेकर के जब तक जिंदा रहेंगे तब तक पूरी कायनात के इकलौते हाकिम है अली, और पैगंबर मुअय्यन करके गए हैं, उसके बावजूद जब लोगों ने छीन लिया, अली अलैहिस्सलाम आके घर में बैठ गए, हुकूमत को गरज हो 25 साल के बाद तो अली के दरवाजे पर आएगी, अली हुकूमत के लिए नहीं जाएंगे। या अली अंता बिमंजिलतिल काबा, अली तुम्हारी मिसाल मिसल काबे के। अब आप इंसाफ से बताइए कि अव्वलना मोहम्मद व औसतना मोहम्मद व आखिरना मोहम्मद कुलना मोहम्मद, हमारे सब मोहम्मद है, पहला हो, बीच का हो, आखिरी हो, सब के सब मोहम्मद है। जब अली के लिए नबी ने कहा कि इनकी मिसाल वैसी है जैसे काबे, ये किसी चीज के लिए नहीं जाएंगे, जिसको गरज है वो काबे के पास आएगा, हत्ता के हुकूमत को भी गरज हो तो वो अली के दरवाजे पर आएगी, अली हुकूमत के लिए भी। इतना ही तो कहना था जब पूछा गया कि आप जो है वो सीरत पैगंबर और सुन्नत शेख हैं, इतना ही तो कहना था कि हाँ, एक झूठ बोलना तो सिर्फ ना करते, किसने कहा करते आप, जब आप हो जाते हाकिम तो किसकी हिम्मत थी आके पूछता, आज के हालात कह देते हाँ, और फिर थार से जो है पूरी खिलाफत करते, किसमें दम था जो आकर के आपसे हिसाब लेता कि साहब आपने वादा किया था, एक लफ्ज़ हाँ करना था सिर्फ, और उस एक नहीं की वजह से 12 साल अली अलैहिस्सलाम घर में बैठे हैं, बताया तो पूरा 25 साल, उस एक नहीं की बुनियाद पर अमीरुल मोमिनीन 12 साल बैठे हैं। मैं अपने इज्तिहाद के खिलाफ नहीं कर सकता, तो जो मिजाज अली का है वही मिजाज तो हसन का भी है, जो मिजाज हसन का है वही मिजाज तो हुसैन सलामुल्लाह अलैह का भी है। अगर अली को हुकूमत से गरज नहीं है तो हुसैन को भी हुकूमत से गरज नहीं है। ये जो इनकार बैयत इमाम हुसैन सलामुल्लाह अलैह का है वो फकत और फकत हिफाजत दीन की खातिर है।
सिर्फ और सिर्फ अक्सर लोग कह देते साहब अमीरुल मोमिनीन सलामुल्लाह अलैह का हक था तो लिया क्यों नहीं, हक था तो मांगा क्यों नहीं। देखिए हक होना और है और उसके लिए हरबे इस्तेमाल करना और है। वो एक बहुत मशहूर किस्सा बचपने से आप भी सुनते आए होंगे, हम भी सुनते आए हैं। अमीर पैगंबर ने कहा अली के लिए अकदाकुम अली, तुम में सबसे बड़ा काजी कौन है? अली है। और आज तक तारीख में मुनकिर के हक में किसी ने फैसला, आज तक किसी जज ने इनकार करने वाले के हक में फैसला नहीं किया होगा सिवाय अमीर मोमिनीन के, कि जो इनकार कर रहा कि मेरी चीज नहीं अली करनी तुम्हारी चीज। दो औरतें आई, मशहूर है ना, एक के पास जो है वो बेटा है और दोनों दावेदार हैं एक बेटे के लिए, वो कहती है मेरा, वो कहती है मेरा। मौलाना ने कहा मान जाओ, ये तो हो सकता है कि दोनों का ना हो कोई तीसरी औरत, लेकिन ये कैसे हो सकता है कि दोनों का हो, या तुम्हारा। तो जो सही बात है जिसका एक है वो आगे आए, बकिया हट जाओ। अरे साहब कैसे मेरा बच्चा, मैं कैसे इनकार कर दूंगा, कैसे सुकून अपने औलाद छोड़ देता है। आखिर में जब देखा तो बिल्कुल सपाट कंबर जी, तलवार ले आओ, आ गई तलवार निहायत बिल्कुल। अच्छा अकल ये कहती है किताब में हो या ना हो कि जरा सा मुस्कुराहट नहीं आना चाहिए, वरना समझ जाएंगे। बिल्कुल सपाट लेजर, नहीं मानते तो क्या करोगे, काट दो, आधा इसको दे दो, आधा उसको दे दो, और कंबर भी चले होंगे बिल्कुल। जिसका वाकई बेटा था उसने क्या कहा, सब दे दिए उसको, हमको नहीं चाहिए। आप इस औरत से कहेंगे जब हक था तो लिया क्यों नहीं, आप कहेंगे इस औरत से कि बेटा तुम्हारा हक है तो इनकार क्यों कर रही हो कि मेरा नहीं है। उसका जवाब क्या होगा, मसला लेने का नहीं है, मसला बका का है। मेरा बच्चा जिंदा रहे चाहे मेरे पास रहे चाहे न रहे, अली खानदान अहले बैत ने इस्लाम को अपनी औलाद की तरह परवान चढ़ाया है। हमारे पास रहे इख्तदार या न रहे, दीन बचा रहे, इस्लाम बचा रहे, ईमान बचा रहे। यही वो फलसफा था कि अमीर सलामुल्लाह अलैह ने सब्र किया है, हम सब्र कर लेंगे मगर दीन महफूज रहे। और इसी मकसद को लेकर के, इसी एम को लेकर के इमाम हुसैन सलामुल्लाह अलैह भी चले। एक जगह नहीं बार बार पर, क्या तुम नहीं देख रहे हो कि लोगों को अम्र बिल मारूफ नहीं किया जा रहा है, लोगों को नहीं अनिल मुनकर नहीं किया जा रहा है। इन्नी खरज, मैं इसलिए निकला हूं कि अन आमरा बिल मारूफ व अनहा अनिल मुनकर, ताकि लोगों को नेकियों का हुक्म दे सकूं, बुराइयों से मना कर सकूं। इन्नी खरज तो लतलब अल इस्लाह फी उम्मत जद्दी, मैं इसलिए निकला होता कि अपने नाना की उम्मत में इस्लाह कर। इनका मकसद इस्लाह है। अभी आपने कहा सुना ना 32 टन का दरवाजा था, कोई आला ऐसा है जो अली की ताकत का अंदाजा कर ले? पैगंबर सलामुल्लाह अलैह की वफात के बाद उसी अली के गले में रस्सी का फंदा है, अकल बावर कर सकती है इसको? क्या ही ताकत, कहां चली गई ताकत, एक तरफ इतनी ताकत और एक तरफ सा गले में रस्सी का फंदा, एक आदमी खींचता हुआ लिए जा रहा है, चले जा रहा है। किताब पढ़ने के बाद तो हम तो ये कह सकते हैं साहब या तो ये रिवायत सही है या ये सही है, दोनों नहीं अकल में। लेकिन जिसने दोनों मंजर अपनी आंख से देखा हो वो कैसे कह देगा कि या ये सही है या ये सही है, तो दोनों देख रहा है, वो तो हैरत में पागल हो जाएगा, ये क्या हुआ मौला, ये क्यों कर रहे हैं आप? इतना सब्र हद होती है किसी चीज की। जबकि फरजदक का नाम सुना है ना आपने, फरजदक के मैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन सलामुल्लाह अलैह के लिए एक शेर, पूरा कसीदा है इमाम के लिए, लेकिन उसका एक शेर फरजदर जगह युग्दी हयाअन व युग्दा मिन महाबते फला युकल्लमु इल्ला हीन यबतस्मु। तो मेरे इमाम का हाल यह है कि युग्दी हयाअन, इनकी आंखें हया और गैरत से झुकी रहती हैं, उसके बावजूद हैबत का आलम यह है कि युग्दा मिन महाबते, सामने जो आता है उसकी आंख मारे खौफ और हैबत के झुकी रहती है। फला युकल्लमु इल्ला हीन यबतस्मु, किसी में हिम्मत नहीं है जो चौथे इमाम से बात कर ले जब तक कि ये मुस्कुरा न दे। तो जहां बोलते का हाल यह है कि जब तक मुस्कुरा न दे बोलने की हिम्मत नहीं पड़ती। अली के सामने कोई रस्सी का फंदा ले जरा सा घूर देते, हिम्मत थी किसी की? सवाल है कि नहीं मौला?
क्यों ये सब्र किस लिए है? अजब नहीं आका जवाब दे, मेरे साथ साथ आओ तब अंदाजा होगा। अब इधर अली को गिरफ्तार करके ले जाया गया। रिवायत कहती है कि एक यहूदी था, उसने जब अली का ये मंजर देखा, लगा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। उसने दूसरे साथी ने क्या हुआ, मुसलमान हो गए तुम,
कलमा पढ़ लिया तुमने?
हाँ।
क्यों?
का मैं खैबर का यहूदी, अब समझे आप, मैं खैबर का यहूदी हूँ,
मेरी इन्हीं आंखों ने देखा है इस इंसान को तेरे खैबर हाथों में लिए हुए काटते हुए,
और यही आंख देख रहे, इस इंसान के गले में रस्सी का फंदा है। मैंने बहुत गौर किया,
एक तरफ वो ताकत, एक तरफ ये सब्र, कोई बात समझ में नहीं आती सिवाय इसके कि ये वाकई अल्लाह के नुमाइंदे हैं।
जब खुदा चाहता है इजहार ताकत करते हैं, जब खुदा चाहता है मुदाहरे सब्र करते हैं, जब मुझको एहसास हो गया ये नुमाइंदे इलाही हैं, तब मैंने कलमा पढ़ लिया। अजब नहीं मुस्कुरा के अली आवाज दे, अब समझे हमारा मिजाज क्या है। अगर एक यहूदी मुसलमान होता नजर आ रहा है, अली अपने गले में रस्सी का फंदा डलवाने को तैयार है। अव्वलना मोहम्मद वाखरना मोहम्मद कुल्लना, वही मिजाज हुसैन इब्ने अली का। आप पूछ सकते हैं इमाम हुसैन से ना, तारीख पढ़िए आप। और अभी आप न शिया है न सुन्नी है न मुसलमान है, इंसान एक तारीख के तालिबे इल्म और स्टूडेंट की हैसियत से आप पढ़िए तारीख करबला को और पूछिए कि आखिरी मौला क्यों कर रहे हैं। वही मिजाज जा रहे हैं। रास्ते में दूर से महसूस हुआ कि शायद आबादी है, और जो करीब हुए नैजों की अनिया महसूस हुई, और जो करीब हुए तो मालूम हुआ 1000 के लश्कर के साथ हुर चला आ रहा है।
हुर के लश्कर की कैफियत यह है
कि रिवायत कहती है इतनी प्यास, इतना प्यास का गलबा था कि जानवरों की जबानें मुंह से बाहर निकली हुई थी। इमाम हुसैन अली सलाम को क्या करना चाहिए था इस लश्कर के साथ?
आप छोड़ दिया, आप शिया नहीं है, आप मुसलमान नहीं है, तारीख के जंग की स्ट्रेटेजी के एतबार से इमाम हुसैन को क्या करना चाहिए था?
छोड़ देते इनके हाल करना, ये अपना 2-4-10 किलोमीटर जाते, शाम तक 2-4 मरते, कल तक सब खत्म हो जाते ना। और एहतियात की जाए अगर आज के एतबार से, इनको घेर लेते, घेर के छोड़ देते, खुद ब खुद मर जाते हैं। लेकिन बजाय इसके इमाम हुसैन ने क्या किया, मश्क के दहाने खोल दिए जाए, जानवरों के सामने से उस वक्त तक बर्तन न हटाया जाए जब तक के सेराब न हो जाए।
तारीख नहीं बता सकती ऐसा इंसान, मिल नहीं सकता ऐसा करीम बशर।
खुद हुर का सिपाही कहता है मेरी कैफियत ये थी कि मुझसे मश्क का दहाना पकड़ा नहीं जा रहा था। फातिमा के लाल ने, हुसैन ने मेरा सर अपने जानों पे रखा,
अपने हाथ से हुसैन इब्ने अली ने मुझे पानी पिलाया,
पी चुके पानी, ताकत आई, जान में जान आई। हुसैन को जो अपना इंसानियत का काम करना था वो मौला कर चुके, अब जब नमाज वमाज के बाद चलने लगे, ये आया और आकर के इन्होंने लजा में फरस पे हाथ डाल दिया। हुसैन जैसे इंसान को बात बुरी लग गई, मौला की जबान से फितरा निकला, दकलत के उम्मक, तेरी माँ तेरे माथे में बैठी।
आप इस जुमले से अंदाजा कर सकते हैं कि हजरत को ये बात कितनी बुरी लगी। हमने पानी पिलाया, ताकत जरा सी आई
तो हम तो छोटी अकल के लोग हैं ना, हमने कहा मौला ये क्या किया आपने, ऐसे लोगों को पानी पिलाया आपने, यजीदी फौज को अंजाम देख लीजिए। अरे मौला ये काहे के लिए आपने हुर को पानी पिलाया,
ये क्यों आपने इन लोगों के साथ एहसान किया?
अजब नहीं हुसैन आवाज दे, मेरे साथ साथ रहो तो अंदाजा होगा कि मैंने ये काम क्यों किया है। अभी तुम्हारी समझ में नहीं आएगा कि हमने क्यों किया है, ये नोट रखो। कितने लोग हैं? 1000। मेरे साथ आओ करबला, کربلا پہنچے, شب عاشور آئی. روایت کہتی ہے جب شب عاشور آ گئی تو یہی سردار لشکر ہے, یہی حر ہے. حر کا عجیب عالم ہے, لرز رہا ہے, کانپ رہا ہے, اتنا ہے کہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے, کیفیت دیکھ کر کے لوگ سمجھ رہے ہیں کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. کسی سے کہا تھوڑی اڑنے کے میری دلی کیفیت کیا ہے, لیکن کچھ ایسا انداز ہوا فوجیوں کو کہ ایک آدمی آ گیا پہنچ کرتے کرتے, اور یہ کیا ہو رہا ہے تم کو؟ اگر کوئی پوچھتا سب سے زیادہ بہادر کون ہے, ہم تیرا نام لیتے, اور یہ کیا ہو گیا ہے تجھ کو؟ اور نے کوئی جواب نہیں دیا. کبھی کبھی زبان کے بجائے عملی جواب زیادہ کارگر ہوتا ہے. یزیدی فوج سے باہر نکل گیا اتنے فاصلے پر کہ امام حسین علیہ السلام کے خیموں کی آوازیں بچوں کی آ سکے سن سکے. باہر نکلا کہا کان لگاؤ کچھ سن رہے ہو؟ اور نے پوچھا, اس نے کہا ہاں سن رہے ہیں. کیا سن رہے ہو؟ کہا بچے بلک رہے ہیں العطش, بچے بلک رہے ہیں ہائے پیاس. اور نے کہا جانتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ, خدا کی آوازوں پر رحمت نازل کرے. جانتے ہو ان آوازوں کا اکیلا ذمہ دار میں ہوں. اور جب اب آپ کا دل منقلب ہو چکا ہے, اب جب کہ آپ کا دل منقلب ہو چکا ہے, ایک چیز کی طرف توجہ دلا دیں آپ کو. حالانکہ میں پڑھ رہا تھا, وقت ختم ہو رہا تھا, جا رہا تھا, لیکن اب چونکہ آپ کی آوازیں بلند ہوئی ہیں, آخرت جس کو یاد ہے نا, اس سے زیادہ خوش قسمت آدمی نہیں ہے. عاقبت جس کو یاد ہے نا, اس سے زیادہ خوش قسمت کوئی آدمی نہیں. کون ہے دنیا میں جس سے گناہ نہیں ہوا ہے؟ کون ہے دنیا میں جس سے خطا سرزد نہیں ہوئی ہے؟ ہے کوئی آدمی جو کہے کہ میں اپنے ایمان اور عمل کی بنیاد پر بہشت میں چلا جاؤں گا؟ بڑے بڑے لوگ مرحوم آیت اللہ العظما شیخ جعفر شوستری رحمت اللہ علیہ, شیخ جعفر وہ شخصیت ہے کہ کہتے ہیں کہ جناب شیخ جعفر عام طور مراجع مجلس نہیں پڑھتے, شیخ جعفر مرجع تھے, مجلس پڑھتے تھے, اور ان کو روایتیں یاد نہیں ہو پاتی تھی. ممبر پر کتاب لے کے بیٹھتے دعوی شیخ جعفر شوستری. ایک دن انہوں نے خواب دیکھا, خیمہ ہے, اندر داخل ہوئے, دیکھا جناب حبیب ابن مظاہر ہے, امام حسین سلام اللہ علیہ. حضرت سید الشہداء نے کہا حبیب دیکھو ہمارا مہمان آیا, کچھ ہو تو بھائی ان کو پیش کرو. تو وہ کہتے ہیں کہ کچھ آٹے میں شکر ملا کر کے حلوے ٹائپ کا حبیب نے بڑھایا, لو چکھ لو. ایک انگلی سے انہوں نے لے کے چکھ لیا, آنکھ کھل گئی. ایسا حافظہ قوی ہوا کہ پھر ان کو کتاب لے کے بیٹھنے کی. اب آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں یہ آدمی کتنا بلند ہے کہ جس پر توجہ ہے حضرت سید الشہداء کی. جتنا زیادہ آدمی اپنے کو حقیر سمجھے گا نا, اہل بیت کی نگاہ میں اس کی عظمت اتنی ہے. مرحوم شہید دست غیب رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جناب شیخ جعفر نے خود اپنی زندگی کا محاسبہ کیا اور اپنے کو خود نمبر دیا انہوں نے کہ نجات مشکل ہے. پھر انہوں نے سوچا کہ نہیں, یا علی حب کا ایمان اور بغض کا کفر و نفاق, مومن تو ہو نا, محبت علی ہے, چلو گناہ کاٹ کے بہشت میں چلے جائیں گے. کہتے ہیں مگر شاہ جعفر نے پھر کہا کہ یہ تو ہمارا دعویٰ ہے نا کہ محب علی ہے, مولا نے اگر ایکسپٹ نہیں کیا تو کیا ہوگا؟ اصل مسئلہ یہ ہے, دعوے کا نام محبت نہیں ہے, قبولیت کا نام. اگر علی نے نہیں قبول کیا تو کیا ہوگا؟ شیخ جعفر کہتے ہیں مایوسیوں نے گھیر لیا مجھ کو, اگر مولا نے کہہ دیا تم میرے عاشق نہیں ہو تو کیا ہوگا؟ ہر طرف سے مایوسی. کہ اچانک ایک امید کی کرن ذہن میں نمودار ہوئی, ایک دروازے کا تصور ہوا. کون سا؟ باب الحسین. تصور کیا ہے؟ کیا یہی بہت لاکھ مجرم صحیح, خطا کار صحیح, لیکن میں نے حسین کے گھوڑے کی لگام نہیں پکڑی, حسین کو گھیر کے کربلا نہیں لایا. وہ تو مولا اتنا کریم ہے کہ جب ان کو بخش سکتا ہے. اللہ اکبر. لہذا اب جب یہاں تک آ گئے ہیں نا, اے حر کے گناہ کو بخشنے والے, اے حر کو علیہ السلام بنانے والے, اے مظلوم کربلا, یہ سب آج آپ کے غم میں یہاں بیٹھے گریا کر رہے. مولا ہمارے لیے خدا کی بارگاہ میں سفارش کر دیجیے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے.
شیطان کے شر سے خدا یا حسین ابن علی
ہم محفوظ ہو جائیں. اللہ اکبر. کسی صورت سے رات کاٹی. صبح ہوتے ہوتے ہر بیٹا بھائی غلام آہستہ آہستہ نکلتے نکلتے اس پار ہو گئے. مگر دیکھیے معافی اپنی جگہ ہے, معافی مانگنے کا ہنر ہونا چاہیے.
میں نے غلطی کیا معاف کر دیجئے,
یہ کوئی معافی کا طریقہ ہے؟ یہ کوئی ہنر, اصل سلیقہ ہے معافی کا. وہ سلیقہ توبہ کا حر سے سیکھی ہے. احساس ہوا کیسے سامنا کرو گے حسین کا, بیٹا آنکھ پہ پٹی باندھ دی,
یہ ہاتھ حسین کے نجام کی طرف بڑھے ہیں,
بیٹا ہاتھوں کو باندھ دے, میں خود قیدی بن جاتا ہوں حسین کا. چند قدم چلے تھے ایک مرتبہ بیٹے نے آواز دی, اللہ اکبر. تکبیر اچھی چیز ہے بیٹا, مگر ہر چیز کا موقع و محل ہوتا ہے. تکبیر تو نے کیوں کہی؟ کرم ملاحظہ کریں گے. بابا فرزند حسین علی اکبر ہمارے استقبال کو آ رہے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. اور آگے بڑھے. اللہ اکبر. اب تکبیر کیوں کہی؟ علمدار لشکر حسینی اب الفاظل چلے آ رہے ہیں.
اللہ اکبر.
اب تکبیر کیوں کہی؟ خود بے نفس نفیس حسین ابن علی چلے آ رہے ہیں. کیا مولا قریب آ جائے تو احساس دلا دینا. بیٹے نے باپ کو احساس دلایا. جیسے حسین کے قریب پہنچا اور نے ہاتھوں کو جوڑ لیا آواز دی, حلی توبہ یا من رسول اللہ, اے فرزند پیغمبر کیا میرے لیے بھی توبہ کی کوئی گنجائش ہے؟
بس حسین کا جواب مل گیا ہم کو. مولا 1000 کا یہ لشکر کیوں پانی پلایا بعد میں اسی لجا میں فرض پکڑ لیا؟
عجب نہیں حسین آواز دے اسی دن کے لیے. اس وقت گھیر کے چھوڑ دیتے یا امتحان میں چھوڑ دیتے مر جاتے, لیکن آج یہ چار آدمی تو رہے راست پر آ گئے نا. حسین وہ انسان ہے طلب اصلاح امت کی خاطر اگر چار آدمی بھی بہشتی ہونے والے ہیں ان کی خاطر ہزار آدمی کو پانی پلانے کو میں تیار ہوں. چار چلے ہیں. یہ ہے مزاج اہل بیت کا. حلی توبہ یا من رسول اللہ, اے فرزند پیغمبر کیا میرے لیے توبہ کی گنجائش ہے؟ اٹھایا کلیجے سے لگایا, ان تبت تاب اللہ علیک, ہاں ہاں توبہ کر, اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے. ہر بات کتاب میں نہیں ہوتی, ہر بات روایت میں نہیں ہوتی. آپ غور کیجئے کتنا بڑا کریم ہے میرا مولا. خدا نخواستہ ہماری کسی سے لڑائی ہو جائے, جنگ ہو جائے, اور تسبیح سال کے بعد توفیق ملے, آپ کے پاس پہنچے, آپ کے پاس پہنچے, آپ کے پاس پہنچے, ہم سے بڑی غلطی, ہم نے ان کے اوپر ظلم کیا بیچاروں کو, بات کیجئے معاف کر دیں. آپ گئے, ارے بھائی وہ مولوی صاحب بیچاروں کو بڑا احساس ہے اپنی غلطی کا, معاف کر دو. کیا چھوڑو معاف کرتے ہیں, مرنا سب کو ہے. اب وہاں سے آپ آئے, دیکھو وہ معاف کرنے کو تو تیار ہو گئے ہیں, چلو معافی مانگو, لیکن پتا ہے تمہاری وجہ سے ان کا یہ نقصان ہوا, یہ نقصان ہوا, یہ نقصان ہوا, یہ نقصان ہوا. اگر وہ کچھ کہتے ہیں تو اف مت کرنا, یہی کیا بڑی بات ہے کہ معاف کر رہے ہیں. میں گیا, حضور غلطی ہو گئی معاف کر دیجئے. اگر وہ آدمی پلٹ گئے, ٹھیک ہے معاف تو کرتا ہوں, لیکن تمہاری وجہ سے میرا وہ بیٹا مر گیا بغیر علاج کے, میں اف کروں گا؟ جی حضور غلطی ہو گئی. حق ہے اس انسان کو کہنے کا کہ نہیں معاف کر رہا ہے, یہ کیا کر. کیا حسین ابن علی کو حق نہیں تھا اتنا کہنے کا؟ اور سے کربلا میں خیمہ مخصوص تھا مشکیزوں سے, تاریخ کہتی ہے چھوٹے چھوٹے بچے اس خیمے میں اکٹھا تھے, مشکیزوں کو اپنے سینے سے لگائے تھے کہ اگر کچھ نمی ہو تو سکون مل جائے. کیا حسین کو اتنا حق نہیں تھا؟ جب غرنے کا معاف کر دیجئے مولا, تو کہتے ٹھیک ہے جاؤ معاف تو کرتا ہوں, مگر اس خیمے میں بچوں کی حالت دیکھ لو, हक था कि नहीं था।
क्या हुसैन इतना नहीं कह सकते थे कि होर हम माफ तो कर रहे हैं
लेकिन जाके गहवारे में अली असगर की हालत देख ले,
हम माफ तो कर देते हैं
लेकिन बच्चों के हाथ में खाली मुंह अलतश की आवाज सुन ले, सकीना की कैफियत देख ले। और अगर हुसैन कहते कुछ होर उफ न करते, लेकिन उल्टा हमने तारीख पढ़ी के बजाय इसके कि इमाम ये कुछ कहते खुद इजहार शर्मिंदगी फरमा रहे हो हम बहुत शर्मिंदा हैं। क्या हुआ मौला,
काहे की गैरत, काहे की शर्मिंदगी? अल्लाह तेरा अल्लाह के साथ है, इतने बड़े लोग हमको मिल गए, ऐसे बड़े घराने से तूने हमको वाबस्ता कर दिया, खुदा तेरा लाख शुक्र, तेरा लाख एहसान है और हम शर्मिंदा है। मौला क्यों?
का इसलिए कि तू ऐसे मौके पर आया है कि हम तेरी कोई मेहमान नवाजी नहीं कर सकते। ये जुमला सुनना था कि हुर तड़प गया, कहता आका मेहमान बन के नहीं आया, भाई इजाजत दे दो अपनी जान कुर्बान कर दे, अल्लाह औलाद देता है इसी दिन के लिए। बेटा खड़ा हो गया, मैं जाऊंगा पहले। मैदान में आया, जंग शुरू हुई, अचानक हुर के कान में आवाज आई, बाप है ना बाप है, तड़प के बेटे की आवाज पे खड़े हो गए हजरत हुर। हुसैन ने पूछा कहाँ कहाँ, करम देखिए अपने इमाम का,
मौला बेटे ने पुकारा है।
अरे हुर क्या गजब करते हो, कहीं बूढ़ा बाप जवान की मैयत पर जाता है? जिस हुसैन के करम का आलम यह है, उस हुसैन का हाल क्या हुआ होगा अपने बेटे के जनाजे के ऊपर, तो जिसके लिए रिवायत कहती है चलते थे तो लगता था रसूलुल्लाह चल रहे हैं, बोलते थे तो लगता था रसूल। यही वजह है कि जितना असर इमाम हुसैन सलामुल्लाह अलैह पर अकबर की शहादत का हुआ है उसी पर।
पहले मैंने पढ़ा था रिवायत यजीद के दरबार की बात, बाद में देखा कि नहीं दोनों जगह, इब्न ज़ियाद क्या कूफे में ये सवाल उठा। 57 बरस की उम्र कोई बहुत उम्र नहीं थी उस जमाने में, और तारीख कहती है आशूर के दिन तक इमाम हुसैन की दाढ़ी भी काली थी, इमाम हुसैन के सर का बाल भी काला था। लेकिन जब लुटा हुआ काफिला करबला से कूफे पहुंचा इब्न ज़ियाद के दरबार में, इमाम हुसैन सलामुल्लाह अलैह का सर उसके सामने आया, दाढ़ी भी सफेद हो चुकी थी, सर के बाल भी सफेद हो चुके। इब्न ज़ियाद मलऊन ने कहा हुसैन बड़ी जल्दी बूढ़े हो गए,
हुसैन बड़ी जल्दी बूढ़े हो गए। रिवायत कहती बीबी ज़ैनब तड़प के खड़ी हो गई, फरमाया इब्न ज़ियाद अरे मेरे भैया को अकबर ने बूढ़ा कर दिया, मेरे मजाए को अकबर ने।
فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلب، إنا لله وإنا إليه راجعون. خدا ہمارے اس عزا کو قبول فرمائے، مزید عزا اہل بیت کی توفیق کرائے، جب تک زندہ حضر اہل بیت سے وابستہ رہے، مرنے کے بعد جوار معصومین میں جگہ کرامت فرمائے۔ خدا ہماری اولاد کو، ہماری ازواج کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دے، انہیں ہماری نجات کا ذریعہ قرار دے۔ جو لوگ دنیا میں جہاں بھی جس طرح بھی ذکر حسین کو عام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، خدا ان کی کوششوں کو قبول فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ما تبارک اللہ
Yao Sen